शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के बच्चे विश्व भर के पहुंच गए हैं पांडव भवन। बहुत सुंदर सीन लग रही है, बाबा भी देख करके खुश हो रहे हैं। आज बाबा ने पूरे ही ज्ञान का सार याद दिलाया है, जो भी अपने मेन टॉपिक्स है, बाबा ने आज उन बातों पर ध्यान खिंचवाया है। और खास बाबा का इशारा है कि पहले तो अलफ की पहचान दो। विश्व भर में किसी को भी बाप की सही पहचान नहीं है और खुद की भी पहचान नहीं है, तो इस कारण से भाई भाई का भी नाता टूट गया, बाप के साथ भी कोई संबंध नहीं, तो बेहद के ऑफेंस बन गए। बिल्कुल कोई वो संबंध रहा ही नहीं। और फिर कर्म फिलॉसफी, गीता में खास वर्णन है कर्म फिलॉसफी की, बातें बाबा ने बताई। निराकार कैसे आकर के ज्ञान सुनाती है, ब्रह्मा बाबा की कहानी भी सुनाई, विनाश और साक्षात्कार स्थापना का किस तरह से हुआ वो भी बताया, और फिर साथ साथ सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बताया। तो आप सोचो कि एक ही मुरली में पूरा ही 7 दिन का कोर्स बाबा ने आज याद दिलाया है, और उसमें भी ड्रामा में कईयों को अपना पार्ट पसंद नहीं आता, तो इस कारण से क्या कहते, बस इससे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो तो वो अच्छा होगा, परंतु ये तो बिल्कुल भगवान के ज्ञान की विपरीत बात है, बिल्कुल ऑपोजिट। क्योंकि ड्रामा अनादि अविनाशी, हरेक को अपना पार्ट अवश्य बजाना है। तो हम सुनते हैं 13 तारीख नवंबर मास के बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएं, श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भाव कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु उसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। कितनी मते हैं, जितनी मते उतनी मनुष्य नहीं, एक एक मनुष्य के अंदर भी अनेक मत आती है, तो जितने मनुष्य है उसे आप मल्टीप्लाई करो 10 गुना मनुष्य मते है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, जब मुरली सुनने आती है जानती है बाबा की मुरली है तो बाबा के सामने बैठे हैं। बाप तो जानते हैं, बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देती है जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं, विश्व भर की आत्माएं, सब आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। कहां कहां मैंने लिखत ये देखी है अपने बाबा के स्थानों पर, कहते हैं कि दूसरा कोई नहीं है जो आपके पाठ जितना अच्छा बजा सके। आप भी अपना पाठ अच्छा बजा सकते हो, और कोई वो पाठ आपका नहीं बजा सकता। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित पिकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है, सभी ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है, वो स्वीकार करते हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि एक ये बात स्वीकार करे तो बहुत विश्व के झगड़े सब शांत हो जाए। लिखो, हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वो है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ। बाबा क्यों इस बात को अंडरलाइन करते? तो सर्वव्यापी आदि की किचरा पट्टी निकल जाए। सर्वव्यापी की बात कितनी, और उसके कनेक्शन की बातें हैं, वो सब बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, तो सब वो निकल जाए। अलग पहले पढ़ाना है। बोलो, ये पहले अच्छी रीति बैठ लिखो, एक तो उनके दिमाग में ठीक रीति से फिट हो, फिर दूसरा वो जो लिखेंगे तो फिर लिखने से और बात उनके लिए पक्की हो जाएंगी। क्या लिखो? आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परमपिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है, परमात्मा को सिद्ध किया, आत्मा को सिद्ध किया, तो बाबा कहते हैं ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परम आत्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में परमात्मा व्यापक नहीं है, सभी में क्या व्यापक है? आत्मा। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, ये चक्कर अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो, उनको बताओ कि नोट करना बहुत जरूरी है। इनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सत्युग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। बाबा क्यों ये कहते? क्योंकि विश्व भर में आदि से आज तक सब धर्म शास्त्रों में चाहे कहानी में स्वर्ग की महिमा बताई जाती। पैराडाइज है, यूटोपिया है, आदाद अपने अपने भाषाओं में बताते, परंतु सबके अंदर ये स्वर्ग की यादगार जरूर है। तो बाबा कहते कि स्वर्ग का प्रभाव इतना भारी है जो विश्व भर में आत्माएं सभी स्वर्ग को किसी न किसी प्रकार से याद करती। तो सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। इस कलप की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, फिर विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है, उनकी भी डिनेस्टी चलती है। विष्णुपुरी कृष्णपुरी तो कई बार सुना, आज बाबा कहते हैं सीताराम की डिनेस्टी और सीताराम की पुरी, राम सीता की पुरी। दो युग पास्ट हुई, फिर आता है द्वापर, रावण का राज। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो नया सिस्टम कौन सा शुरू होता? तो विकार का सिस्टम बन जाता। देह अभिमान में आए और रावण का सिस्टम विकार का सिस्टम। सत्य त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है और ये भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। आज तक किसी और ने भगवान का क्लियर परिचय नहीं दिया। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूं, सत हूं और अमर हूं। सत्तो रजो तमो में आत्मा आती है, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। बेबीज को भी देखो तो किसमें गुस्सा होगा, किसमें बहुत अच्छी मुस्कान होगी, कोई शांत होगा, कोई चलाता रहेगा, तो बिल्कुल आत्मा वो संस्कार अपने साथ ले आई है। सत्युग में तो विक्रम होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वो कर्म अकर्म बन जाता, प्लस माइनस कुछ भी नहीं। प्लस संगम युग, माइनस द्वापर से, सत्युग त्रेता अकर्म। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा किस कर्तव्य के लिए आया है? पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया बनाने, जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं, उनको ही सतयुग कहा जाता। और यहां फिर ये कर्म, कलयुग में हर एक के कर्म को देखो तो उसकी क्वालिटी क्या है, ये कर्म विकर्म ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके अलावा कोई कर्म तो होता ही नहीं है कलयुग में। और फिर उसके लिए कहेंगे परंतु ये तो जरूरी है ना, संसार में रहना है तो मोह बिगर कैसे चल सकते। एक एक विकार के लिए बिल्कुल वो अपने को सिद्ध करते हैं, ये तो मानव के लिए जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि कलयुग में तुम बिल्कुल कर्म विकर्म, और तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। कलयुग में हम बैठे थे परंतु समझ नहीं था कि ये कलयुग है, और कलयुग की निशानियां क्या होंगी वो भी देख रहे हैं तो भी नहीं समझ रहे हैं। तो पहले तो बाबा को कलयुग क्या है वो भी समझाना पड़ता, सत्युग क्या है वो तो वैसे कोई नहीं जानती, तो बाबा ही समझाते। एक एक बात अच्छी रीति समझे, बाप टीचर ने क्या समझाया। अच्छा, पहले बाप की पहचान दी, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर टीचर कर्म फिलॉसफी सृष्टि चक्कर की बातें में होकर सुनाए, फिर अब बाकी रहा। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाते ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है फिर शरीर भी पावन बनता है, जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सत्व प्रधान बनेगा। एलॉय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। कहते हैं कि भारत में जितना सोना है जो गवर्नमेंट के पास है वो तो आजकल बहुत कुछ है, परंतु जो माताओं के पास, हर माता के पास कम से कम एक दो चूड़ियां तो होंगी ही। आप भारत की पॉपुलेशन सोचो और उसमें भी फिर माताओं की संख्या सोचो, और हर माता के पास जरूर कुछ न कुछ सोना होगा ही। तो तभी कहते हैं कि भारत में जितना सोना है कहीं और जगह नहीं है। तो बाबा सोने का ही एग्जाम्पल बताते, तो यदि 24 कैरेट का सोना होगा, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सत्व प्रधान बनेगा, एलॉय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने का चिड़िया थी, अर्थात सत्व प्रधान नई दुनिया थी, फिर अब तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना था, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती जाती है, ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है, बाबा बता रहे हैं कि सतगुरु नाम लेते हैं परंतु उसका काम क्या है, वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। शिव बाबा तो हम सब वानप्रस्थी, तो जो अपवित्र ग्रस्ती थी उससे तो निकाला, परंतु कईयों को तो फिर अपना बना करके उनको एक नई बेहद की पवित्र ग्रस्ती दे दी। परंतु वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना, तो ये सारे नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देती है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वे ही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाती है। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती है, बाप को बुलाती है परंतु उन्हें जानती नहीं। वो कैसे भाग्यशाली रथ में आती है और तुमको पावन दुनिया में ले जाती, तो बाप समझाती है मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेती है। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मवंशी बनते हैं, गोल्डन से सिल्वर आद आद। फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो, लगता है आत्मा प्योर बनती जा रही है। प्रूफ, संस्कार बदलते जा रहे हैं। जो पिछले साल अब मधुबन में आए, कितना परिवर्तन हुआ, जो आज कहेंगे आज तो हम बिल्कुल वो नहीं है, और अभी 2 सप्ताह मधुबन में रह करके और परिवर्तन। तो जो यहां पहुंचे हो और यहां से फिर आप वापस जाएंगे तो सेम तो नहीं होगा ना। बाबा के घर का अनुभव, योग का अनुभव, बाबा का भोजन, सब बातें का जो वातावरण है, हर बात से आत्मा प्योर बनती जाती। फिर आयरन से गोल्डन बन रहे हो, बाप कहते हैं मुझ एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है, उनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में अक्षर एक्यूरेट है, ये सारी बात है। पुराने ब्राह्मण बूढ़े तन में आना, अनेक जन्मों के अंत का भी अंत, परंतु समझते नहीं। गीता को ही सर्व शास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर के ब्राह्मण को और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं, और उनका तो सबको मालूम है ही, क्राइस्ट आदाद कित समय आया, क्या करके किया, इनका देवता धर्म का कोई को पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके, वो सुंदर नाम रूप झलक वो तो सत्युग का ही फर्स्ट जन्म, फिर तो वो भी बदलता जाता है, युग भी बदलता जाता है, सब बातों में परिवर्तन। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके, पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है, ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर का नाम आदि तो दूसरा पड़ेगा, समय फीचर्स तिथि तारीख आदि सब बदल जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सत्तो रजो तमो में आना ही है, सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदले जाते, सृष्टि स्वर्ग समी स्वर्ग नहीं, फिर तो द्वापर युग शुरू हुआ, फिर तो दूसरा नाम आ जाएगा। अभी ये है संगम युग, मैं आता ही हूं संगम पर, ये हमको अंदर में पक्का करना है। कल भी बाबा ने बहुत अंडरलाइन किया, आज भी बाबा अंडरलाइन करते, बाप हमारा, बाप टीचर गुरु है, जो फिर सत्व प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए, वो है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। घर में तो कोई पाठ नहीं बजाते, जो पाठ था, ड्रेस था, वो वहां ही छोड़ा। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावे, परंतु मुक्ति तो किसको मिल सके? सदा के लिए मुक्ति जो चाहते। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, ऐसे यहां तो कोई नहीं कहेगा ना कि मेरा पाठ मुझे पसंद नहीं। हर एक भाग्यशाली बैठे हैं, भगवान ने कितना सुंदर भाग्य बना के दिया है, भगवान हमें कितना ऊंच चढ़ा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, ड्रामा ने मुझे बहुत अच्छा पाठ दिया है जिसमें मैं बाबा के बन गए। परंतु बाबा कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमको पाठ बजाना पसंद नहीं, परंतु उसमें कोई कुछ कर न सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, और यह है श्रीमत। श्रीमत श्रेष्ठ बनाने लिए, मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता, उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु ये भी किसको पता नहीं, अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वो यहां कैसे आएगा? वो उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे। कहते भी हैं देवताओं के आगे ये बिल्कुल अपनी सच्ची बात जो है बता देते, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्यों के आगे तो अपना अहंकार दिखाएंगे, देवताओं के आगे तो सिर झुका करके दिल से ये आवाज निकलेगा। आप हमको ऐसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। मैं कभी जीवन मुक्त या जीवन बंद में नहीं आते, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, इनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगने करते रहते हैं, लक्ष्मी के आगे, अम्बा के आगे, शक्तियों के आगे कुछ न कुछ प्रार्थना में, विदेश में भी भगवान को प्रार्थना के भिन्न भिन्न प्रकार होते, परंतु सारे विश्व भर में भगवान से मांगते हैं या देवताओं से मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं बेसमझी से मांगने करते रहते, बेसमझ तो जरूर, बहुत क्लियर बाबा ने बताया है, दुखी ही होंगे ना। जहां समझ है किसी भी बात के कारण दुख उठाते नहीं, समझ नहीं है, बेसमझी है, तो फिर तो किसी ने किसी प्रकार से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, वो कहानियां सदा चलती रहेंगी, दुखी होते रहेंगे। बेसमझी, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, ऑर्फन बन पड़े हैं, वो होते हैं हद के ऑर्फन्स और ये है बेहद के ऑर्फन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया, पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना। अब वो पूछती है जो आप अब तक तो पावन ने बताया है 70s कोर्स का रिवीजन, वो सब कुछ आपकी बुद्धि में ठीक रीति से बैठा है? यस नो, नॉट यस नॉट नो, नथिंग। नहीं, बुद्धि खाली तो नहीं है, बुद्धि में बाबा की ये सब मीठी मीठी बातें बिल्कुल समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं उनको इमर्ज करो, ज्ञान समाया हुआ है परंतु बुद्धि में जितना ये इमर्ज करते रहेंगे तो वो खुशी, वो शक्ति, वो झलक, वो फलक से आप आगे बढ़ेंगे। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम जैसे कई बार बाबा कहते हैं संगम पर खड़े हैं, परंतु आज बाबा उसमें एक और शब्द जोड़ते हैं, अभी हम टेम्पररी संगम युग पर खड़े हैं। जहां टेम्पररी रहना होता वहां कोई भी बात में दखल नहीं होती, अपना घर समझ के चलते, ऐसे नहीं हो, ऐसे हो, ये क्यों नहीं हो, ये ऐसे हो। परंतु जब मेहमान है, टेम्पररी कहां होते हैं, तो क्या सोचते, कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो, कोई हर्जा नहीं। तो हमारे पास भी इतना हम सहज रीति से, बिल्कुल हल्के रीति से जो बात सामने आए उसको स्वीकार करके, एडजस्ट करके चलते रहे, वो तब जबकि ये बात पक्की हो हम टेम्पररी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता है, तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते ये ही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पर रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को ये याद नहीं रहना चाहिए, स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, फिर भी वो याद नंबरवार अनुसार रहती, पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी, बाबा देखते हैं बच्चों की बुद्धि में याद नंबरवार रहती, तो बाबा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वालों को टीचर्स जरूर प्यार जास्ती करेंगे, कितना अंतर पड़ जाता। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे, माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देंगी, माया बहुत धोखा देती है। बाप मिसाल देती है, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। बाबा बहुत नम्रता से अपनी कहानी सुनाते, चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे। दादा लेखराज को भी साक्षात्कार की आश थी तो शिव बाबा ने तो पहले आकर के वो आश पूरी की। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएंगी, पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये हुई, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराए, निश्चय हुआ, और ये है ईश्वरीय बुद्धि। तुरंत ही भगवान ने उनको ईश्वरीय बुद्धि का वरदान दिया। ईश्वर में प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ, सिखलाते सिखलाते यहां तक आ गए हैं। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए। आत्मा पवित्र होती जाती, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं फिर भी माया भुला देती। तुम कहते हो सात रोज पढ़ो तो कहते हैं कल आएंगे, दूसरे दिन माया खलास कर देती है, कल तो कभी आता है नहीं, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं, कहते भी हैं हां जरूर आएंगे परंतु माया उड़ा देती, रेगुलर होने नहीं देती। जिन्होंने कलक पहले पुरुषार्थ किया वो जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। ये 68 की मूवियां चल रही है तो नवंबर मास तक तो 3-4 म्यूजियम बन चुके थे। जिन्होंने कलक पहले समझा है वही समझेंगे, विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेंगी। एम ऑब्जेक्ट ये है ना कि यार क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। सब कहेंगे हम स्वर्ग में जा रहे हैं, परंतु स्वर्ग में कहां पर होंगे, अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। Yeah. धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरा, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की नई गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान, हर वरदान बहुत सुंदर होता परंतु आज विशेष, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्थी भाव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है, कोई ने इस बात को सोचा होगा, बाबा जो बताने जा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। बाप के समीप, दादियों के समीप, सब भाई बहनों के समीप, तो बाबा कितनी सुंदर बात याद ला रहे हैं। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसीलिए एवर हेल्दी होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है तो बोलो, फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। कितनी मीठी बात बाबा ने बताई, आपका हाल चाल कैसा है तो फरिश्तों की चाल है और बिल्कुल खुशहाल है। स्लोगन, पुशारत पुशारत, अनेक बार बाबा ने आज पुशारत की बात कही तो स्लोगन से बहुत अच्छी युक्ति मिलती है, जिसे पुशारत सहज हो जाए। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न मन तो पुशारत में मेहनत नहीं करेंगी, करनी पड़ेंगी। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न मन तो पुशारत में मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। इसी रास्ता पुशारत का। आज का अव्यक्त इशारा, जहां यूनिटी है वहां सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन, हर कदम में फॉलो फादर। जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के, यही सफलता मूलक बनने का आधार है। किसको गिराने में यूनिटी नहीं, परंतु सब चढ़ती कला तो क्या उड़ती कला में चले। बाप के संस्कार और बच्चों के संस्कार। ओम शांति।
ओम शांति। आज जयंती दीदी हमारे बीच में है, आते हैं और फिर भारत के कई स्थानों पर चक्कर लगाने जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं, तो हम देख रहे हैं उनको कैसे विदेश और भारत दोनों को कैसे सुंदर रूप से मिलाया है। सब निमंत्रण तो देते हैं, तो इस बार जयंती दीदी कितना समय भारत में है, लंदन तो गई नहीं होंगे ना जयंती बहन, लंदन तो गए नहीं होंगे ना, गए थे
कम
बीच में,
बीच
फिर आए। तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर टाइटल दिया फ्लाइंग एंजल, तो फ्लाइंग एंजल को हम आता जरूर स्वागत करते हैं। साकार बाबा मम्मा दादियों से, अव्यक्त बाप दादा से कितनी दुआएं कितने वरदान मिले हैं, लेकिन अभी सुनने का समय नहीं है। हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है ध्यानी। ध्यानी अब कहाँ, तुम जल्दी आओ। वो कहती मैं डांस जरूर करूंगी। बहुत प्यारी सी बच्ची है, कितने सालों से रोज हर साल मधु बनाती। कहाँ है भाई, जल्दी